ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाप खेवैया भी हैं, बागवान भी हैं और जादूगर भी है। बाबा के आज तीन टाइटल्स में बाबा ने बताया कि बाप क्या करता है, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ले जा रहा है। अब तुम बच्चों का लंगर जो है इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं, बाबा बागवान भी हैं। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा जैसा जादूगर दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में अनेक प्रकार के जादूगर हैं, वो झूठी झूठी चीजें निकालते हैं, क्या क्या दिखाते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा जादूगर है जो कोड़ी से हीरे तुल्य बना देता है और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। फिर बाबा ने एक ऐसी बात कही है कि कोई, जैसे कई बार बाबा मुरली में बताते हैं, आज भी बाबा ने कहा, कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें अपनी स्थिति को कैसे बनाना है। बाबा ने आज उदाहरण दिया, जैसे बांदेलिया हैं, उनको मार पड़ती है, बहुत तो दुख देते हैं, लेकिन वो बाबा को बहुत याद करती हैं, बाबा बाबा कहती रहती हैं, तो उनकी याद जो बहुत ज्यादा है, तो बाबा ने एक बात ऐसी कह दी, भले वो मारे लेकिन तुम बाबा को याद करो और वर्षा लो। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 23 मई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें खेवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। मीठे बच्चे तुम्हें खेवैया मिला है, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आज का प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई कर नहीं सकता। जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। इसका उत्तर है, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, ये बहुत बड़ी जादूगरी है। कोड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बनाना, फिर कांटों को फूल बनाना, ये बहुत बड़ी जादूगरी है जो एक बाप जादूगर ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते। दुनिया में जो जादूगर होते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाते, इतना पैसा निकाल निकाल के जादूगरी में दिखाते, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता, फिर भी कमाई के लिए जादूगरी करते हैं। पानी निकालेंगे, कोई चीज निकालेंगे, इतना जबरदस्त उनका ट्रिक होता है, लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो सारा झूठ ही होता है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादूगर जादू कोई कर नहीं सकते हैं। ओम शांति। सारी सृष्टि का चक्र का ड्रामा में बाप एक ही बार आते, सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसी नहीं समझते होंगे। ना वे कथा करने वाले बाप है, ना वो बच्चे, और सत्संगों में सुनाने वाला ना तो बाप है और सुनने वाले कभी नहीं सोचते हैं कि हम बच्चे हैं। यहाँ तो हम समझते बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वहां तो क्या कहेंगे, गुरुजी कथा सुनाएंगे, फलाना महात्मा कथा सुनाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना वे कथा करने वाला बाप है, ना वह बच्चे हैं, वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। क्यों नहीं फॉलोअर्स है? क्योंकि उस गुरु को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो और कौन हो, स्टूडेंट्स भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा आएंगे, बाबा जाएंगे, फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। बाबा आए हैं, जब जाएंगे हमको साथ ले जाएंगे और जाकर के गुलगुल दुनिया में हम राज्य करेंगे, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। किस बात के लिए? कि बाबा आया है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, दुनिया वाले नहीं समझते। बाबा कहते केवल तुम बच्चे समझते हो, बाबा आया हुआ है, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमको लेकर के जाएंगे। तो बाबा कहते ये समझ भी अब तुम बच्चों को है, बाकी सारी दुनिया में सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर के क्या बनाते हैं बताओ, क्या बनाते? बाप आकर के समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते, बाबा क्या करते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। ये जो स्टूडेंट लाइफ में एक बार होती है, वो दुनिया की स्टूडेंट लाइफ अनेक बार होती है। ये स्टूडेंट लाइफ संगम युग में एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधे आदि में फंसे हुए रहते हैं उनको कभी ये बुद्धि में नहीं आ सका, उनको कभी भी बुद्धि में नहीं आ सकता कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाबा कहते बहुत हर्षित होना चाहिए। जबकि तुम बच्चे जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और सभी हैं पाई पैसे वाले के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बन। दुनिया में कोई बहुत बड़ा रिचेस्ट होगा तो बाबा कहते हो कितना भी रिचेस्ट हो, लेकिन उनके बच्चे तो पाई पैसे वाले, आज है पैसा कल चला जाएगा, लेकिन तुम तो भगवान के बच्चे हो। और सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम हो भगवान के बच्चे बने हो। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती है। साकार में बाबा के टाइम पर बच्चे आते थे और उस समय तो थोड़ा ऐसे तो बाहरी दुनिया में नहीं रहे हैं, तो बाबा हमको कहते थे ना, तो बाबा को कहते बाबा हम ज्ञान नहीं सुना सकते, बाबा हम ये नहीं कर सकते, हमारी मुरली नहीं चलते। बाबा कहते वो भक्ति में जाते हो क्या सुनते, जो सुनते कथा सुनाते हो ना। तो बाबा कहते हैं कोई कहते हैं हमारी मुरली नहीं चलती है, ये होता है ये होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी है, जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वे जानते नहीं है, सिर्फ उंगली से इशारा करते। अब बाबा ने क्या राज बताया कि अगर आप ज्यादा नहीं सुना सकते हो तो शांति से भी थोड़ा इशारा करो। वैसे उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वह जानते ही नहीं है कि कौन है, दुनिया में भगवान को कोई जानते नहीं है, अपने बाप को भी कोई नहीं जानते। ये भी ड्रामा ऐसा बना हुआ, कितना वंडरफुल ड्रामा है कि अपने बाप को ही नहीं जानते, लेकिन हम बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है कि दुनिया नहीं जानते, हम अपने बाबा भगवान के सामने बैठे हैं। तो बाबा कितनी ड्रामा भी ऐसा बना हुआ, फिर भी भूल जाएंगे ऐसे, फिर भी भूल जाएंगे ऐसे नहीं, तुम्हारे में भी सभी बाप और रचना को जानते हैं, कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे चलते हैं, बात मत पूछो। बाबा के बच्चे भी कई तो बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाबा को कहना पड़ता है कई बच्चे ठीक पुरुषार्थ नहीं करते ना, तो बाबा कहते कहाँ कहाँ तो चलन ऐसे चलते हैं, बात मत पूछो, यह वह नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है पुरानी दुनिया में रहते हैं लेकिन बुद्धि से डिटैच है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं, तुम जानते हो कल ही भी दुनिया से अब हमारा पैर उठ गया है। बोट बोट मीन्स नाव, बाबा की जो बोट नाव का लंगर उठा हुआ है ना, जैसे होती है ना बोट, उसका लंगर पहले बांध के रखते हैं, जब नाव चलने लगती है तो उसका लंगर, लंगर में सो रस्सी होती है बहुत बड़ी बड़ी, वो लंगर उसको कहते हो, तो लंगर को जब खोलते तब बोट आगे बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं बाप अब तुम्हारा इस कलयुगी पुरानी दुनिया से पांव उठ गया है, बोट अर्थात नाव का लंगर उठाया हुआ है, अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये भी बुद्धि में है, क्योंकि बाप खेवैया भी है तो बागवान भी है। बाबा जब मुरली क्लास में आते थे ना, कभी कभी अपने साथ बगीचे में चक्कर लगा के आते थे और वहां से अनेक प्रकार के फूल लेकर के आते थे। बाबा कहते थे देखो कितना सुंदर फूलों का बगीचा है, तो बाबा भी कहते थे तुम भी कौन हो, चैतन्य फूलों का बगीचा हो, बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बगीचा और कोई नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है, अब जादूगरी क्या करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं और कोड़ी तुल्ले से हीरे तुल्ले बनाते हैं और पुरानी नाव को नई दुनिया में ले जाते, गुलगुल बनाते हैं, ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है, कोड़ी तुल्ले आत्मा को हीरे तुल्ले बनाते हैं। आजकल तो देखो जादूगर कितने निकले हैं, छोटे छोटे भी क्या करते, छोटी छोटी बातें सीख करके करते रहते प्रैक्टिस करके जादूगर बन जाते हैं। तो बाबा कहते आजकल जादूगर भी बहुत निकले हैं, ये है कौन सी दुनिया, ठगों की दुनिया। जादूगर तो पूरी ठगी करते हैं, ऐसी ठगी करते हैं उनकी ठगी को पहचानना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी ठगी होती। तो बाबा कहते ये है ठगों की दुनिया, बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धूम से कहते हैं, जब गीत गाते हैं ना जैसे पंजाबी में गाते गुरुमुखी में गाते रहते हैं तो सतगुरु अकाल सत श्री अकाल ऐसे बोलते हैं ना, तो बाबा कहते बहुत धूम से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए, ना वह समझते हैं ना लोग ही कुछ समझते, वो गाते रहते बिना अर्थ के गाते रहते हैं, खुद भी नहीं समझते सुनने वाले भी नहीं समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। तो बाबा कहते देखो ये पुरानी दुनिया क्या है, इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है। बच्चों को जब मालूम पड़ता है कि बाबा नया घर बना रहे हैं तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखे। घर लौकिक में भी होता है, जब बच्चों को मालूम पड़े हमारे लिए नया महल बन रहा है तो बुद्धि वहां चली जाती, पुराने से डिटैच हो जाते। बाबा के तो ऐसे तो नहीं होता ना, तो ऐसा कौन होगा। बाबा नया घर बना रहे हैं तो तुम बेहद तो दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसको घर से, नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए। कौन सी स्मृति रहनी चाहिए? कि बाबा हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे। कौन सी स्मृति बोलो? कि बाबा हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम है। क्या क्या नाम है? सत्युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इनका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रोड़ो नर्क, कंसपुरे। पुरानी दुनिया के क्या क्या नाम? दुख की दुनिया, हेल, कांटों का जंगल, रोड़ो नर्क और कंसपुरे। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि है ना, भारत का देखो क्या हाल है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि है, सत्युग में है सब पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते। कोई महान व्यक्ति बनता है, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी स्टैंप बनाते, कोई देश के लिए करता है उसके लिए स्टैंप बनाते हैं। ऐसे बाबा की स्टैंप बनानी थी तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के बाबा की स्टैंप बनाई थी। तो बाबा ने कहा यहाँ तो देखो कोई कार्य करता है स्टैंप बनाते रहते हैं, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। कौन सी बात? ऊंच से ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? पहले शिव बाबा, फिर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। को तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो परवरिश आदि देखो कैसी बना दी, गले में सांप है, पता नहीं क्या क्या शेर की खाल है उसकी, देखो ना परवरिश भी उसका कपड़ा उसका कैसा बना के बना दिया है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है, शंकर की तो परवरिश आदि कैसे बना दी है। कह देते हैं कि वो भांग पीता था, धतूरा पीता था, पता नहीं क्या क्या उसके लिए कहते हैं। वो भांग पीते थे, धतूरा खाता था, ये तो इंसल्ट है ना, ये बातें तो होती नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो लोग क्या नहीं करेंगे उसको देख करके, फिर लोग भी ऐसे करते हैं। भीड़ लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि जब शंकर पी सकता है तो वो भी कई दिन ऐसे होते हैं वो जाकर के भांग पीना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें होती नहीं, वह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं, अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब तो बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी और ब्रह्मा की भी बेइज्जती कर। ब्रह्मा के लिए भी क्या क्या शास्त्रों में लिख दिया और शंकर के लिए भी क्या क्या बातें, और बाबा के लिए तो कह देते कण कण में भगवान है। तो बाबा कहते हैं तब बाप कहते मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती और ब्रह्मा की भी बेइज्जती करते हैं, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। अब बाबा ने फिर दूसरी बात भी कह दी, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण या फिर राधे कृष्ण जाके लक्ष्मी नारायण विष्णु बनते ना, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है, ये ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, फिर भी बिचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है, अजमेर में एक मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ। दाढ़ी मूंछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते हैं। ये तो समझ की बात है ना, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को अपनी रचना रचनी है और नई दुनिया बनानी है, तो बाबा कहते उसको तो फिर यहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की संतान कितनी है, कितनी गिनती कर सकते हैं? सारी दुनिया के तो हैं, लेकिन बाबा के बच्चे कितने हैं उसकी संख्या गिनती करते रहते हैं, कभी एक्यूरेट तो होती नहीं, बढ़ते रहते हैं, कभी पत्ते झड़ भी जाते हैं, तो हैं तो बहुत ना बाबा के बच्चे। तो इस समय ब्रह्मा की संतान कितनी है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां कितनी ढेर है। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और कुछ करते? कभी कभी बाबा मुरली में बच्चों से प्रश्न पूछते, बताओ कि क्या प्रजापिता ब्रह्मा केवल बच्चे ही पैदा करते हैं और कुछ करते हैं? और क्या करते हैं? क्या करते हैं? सच्चे ब्राह्मण बनाते हैं, फिर बाबा क्या करते हैं, बच्चों को लायक बनाते हैं और दैवी गुण धारण कराते हैं, सत्यों में ले जाने के लिए तपस्या कराते हैं, सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी तो कराते हैं ना। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं या और कुछ करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा, आदि देव सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है ये किसको भी पता नहीं है। रचयिता है तो जरूर यहाँ ही होकर गया होगा, जब रचयिता है तो बाबा कहते वो यहाँ ही होगा ना, कहीं दूसरी जगह थोड़ी रचना करेगा। रचयिता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ये नई बातें है ना, अब दरों को बताते ना, हम सब एडॉप्टेड बच्चे हैं तो दुनिया वालों को समझ नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, पहले ये वोटिंग के लिए नाम लिखते थे, मतगणना करते ना, तो उसमें क्या होता है, जब वो चार्ट लेके आते सबका नाम, पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्म, पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्म, वो कहते क्या सबका पिता एक ही है, इतने सारे बच्चे हैं, तो दुनिया वाले तो समझते नहीं है ना, लेकिन है तो हम सब एडॉप्टेड बच्चे। तो बाबा कहते हैं नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए, ये नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आया तब तक तो कोई जान नहीं सकते, जिसका जो पार्ट है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया और आकर के क्या किया, ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? अब बाबा पूछते हैं कि बुद्ध को क्या गुरु टीचर बाप कहेंगे? बाबा की तो उसको तो नहीं कह सकते ना, वो है अपना धर्म स्थापन किया। तो बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, आकर के क्या किया, ये कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो क्या वह गुरु है, टीचर है, बाप है? तो फिर किसी ने जवाब दिया, नहीं, सदगति तो दे ना सके, वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे, गुरु नहीं है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं, बाप टीचर गुरु तीनों है। यहाँ पर बाबा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। बाबा कहते जब बेहद का बाप है, ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। बाप ने स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो क्या हुआ? अब बताओ भट्टी वाले बताओ, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है बताओ चंडीगढ़ वाले, हाथ तो खड़ा करो चंडीगढ़ वाले, करो हाथ खड़ा करो। पता है चंडीगढ़ क्या है? बाबा के संकल्प की रचना है। बाबा ने ही चंडीगढ़ में सेंटर खुलवाया था। बाबा को होता था कि वहां पर सेंटर खुले, तो बाबा ने ही सब करवाया। अच्छा भंडारा वाले हाथ उठाओ। अच्छा भंडारा वाले बहुत, वहां भी पुराना सेंटर था बाबा के टाइम पर, फिर दादी के टाइम पर भी बहुत बड़ा सेंटर बना। अभी तो बहुत अच्छी सेवा हो रही है। तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बता रहे हैं कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। बाप ने स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, वो कहाँ गया? स्वर्ग का राज्य भाग्य कहाँ गया भट्टी वाले बताओ, कहाँ है वो? कहाँ किया, गुम कर दिया या अभी मिल रहा है या है अभी? इतना भी नहीं पता है क्या? पता है ना, बोलो। बाबा ने दिया था, हमने वो भोगा, अभी फिर से हम ले रहे हैं। बोलो फिर से ले रहे हैं। बाबा को बताओ हम फिर से ले रहे हैं ना। तो बाबा कहते बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले। जो 5000 वर्ष के बाद आकर मिले वो हाथ खड़ा करो। अच्छा जो अभी मिले हैं, अच्छा जो बिल्कुल नए नए हैं वो हाथ खड़ा करो। जो नए हैं बिल्कुल कोई नहीं, सब 5000 वर्ष वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। नशा है ना, जो पाना था सो पा लिया। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। बाप कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। कोई गिनती कर सकते हैं कितने बार मिले? अनगिनत बार है ना, अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं। भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे तो अंदर में खुशी है ना। अब सुनो नई राज की बात। बाबा के टाइम पर बहुत बंधेलियां होती थी, उनको घर से आने नहीं देते थे, कई प्रकार के बंधन होते थे। कईयों को शुरू में मार भी पड़ती थी, कईयों को कमरों में बंद कर देते थे। तो बाबा उनको क्या बता रहे हैं? तो बाबा बता रहे हैं भल तुमको कोई कितना भी मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। कई कई माताएं आती हैं, कहती हैं हमारा पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म बंधन है क्या है, लेकिन बाबा बता रहे कर्म बंधन नहीं है, तुम तो और ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ कर रही हो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, भल वो कुछ भी करें तुम्हें शिव बाबा मिला है तो याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं, अव्यांग बांधलियों के लिए तो और ही जास्ती कहते हैं, क्योंकि वह जास्ती शिव बाबा को याद कर, वो बाबा को याद करती थी। बाबा भी बांधेलियों को बहुत याद करते थे। वो जमाना था जब बहुत बंधन होते थे, आजकल तो इतने बंधन ही नहीं है। आजकल तो मन का बंधन होता है, छोटी सी बात होगी फलाना मेरी बात नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता है, ये क्या हो रहा है, ये भी बंधन है। बंधन कुछ भी नहीं है, लेकिन मन के बंधन बनाए हुए हैं। तो बाबा जो बता रहे वो सुनते हैं। अबलाओं और बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप करते हैं, क्योंकि वे जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती हैं, शिव बाबा रक्षा करो, कितने याद करते शिव बाबा मदद करो, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भल रोज मार खाओ। देखो बाबा बच्चियों को क्या कह रहे हैं, बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, बाबा उनकी हल्का कर रहे हैं। जो मार पड़ रही है उसे देखो, वो कुछ भी करते हैं मारते हैं तो उसका असर नहीं होता। बाबा से प्यार है, बाबा से प्राप्ति होती है, विकर्मों का खाता खत्म हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं अभी ऐसी कोई स्थिति है नहीं, ये मत समझना वो जमाना गया जब वो जमाने में ऐसा होता था। आजकल तो कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है और ना होता है, केवल मुख से मैं तो होती है, बाकी कुछ होता नहीं है। लेकिन बुद्धि पक्की हो, बाबा से प्यार हो, तो ये सारे बंधन भी धीरे धीरे कट जाते हैं। और छोटे छोटे बंधन आते हैं और धीरे धीरे सहयोगी भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भल रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगे ये तो भलाई है ना। उस समय वो कुछ कर रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, इतनी लगन होती थी। बाबा भी बंदेलियों को बहुत प्यार करते थे, बहुत याद करते थे। बाबा को भी तरस पड़ता था ये बच्ची इतना सहन कर रही है, तो बाबा बैठ करके खुद उनको साकाश भेजते थे। तो कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा बैठ करके साकाश ने उसको मदद करे, बाबा ऐसे बच्चों को याद करे, तो उसका तो भाग्य सबसे ऊंच हो गया। तो बाबा कहते हैं तो ये तो भलाई है ना, ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहती है ना गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। कुछ भी हो बाबा बाबा करते रहेंगे, शरीर को कुछ भी हो तो बाबा साथ हैं। जब तुमको जब मार पड़ती है तो बुद्धि में अलफ और बे याद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ और क्या याद आना चाहिए, वर्षा जरूर याद आना चाहिए। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वह तो तुमको विष के लिए विकार के लिए मारते हैं, मार करके शिव बाबा को याद दिलाते। देखो बाबा क्या बता रहे, वो कैसी गंदगी के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन तुमको तो शिव बाबा की याद आती है। वह तो तुमको विष के लिए विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई ना। अभी लड़ाई है, सारा विनाश होगा, तब तो नई दुनिया आएगी ना, इसमें भी कल्याण समाया हुआ। इसलिए बाबा कहते उसमें भी क्या कल्याण है कि बुद्धि एक बाबा की तरफ ही लगी रहेगी। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेले की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो। कई दिनों से बाबा मुरली में एक बात बता रहे हैं कि उस समय प्रदर्शनी का नाम लिखा हुआ था नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। फिर बाबा कई दिनों से बता रहे हैं उसके साथ और क्या लिख दो, उसके साथ लिख दो गेट वे टू हेवन। बाबा ने लिखवाया भी था और कई जगह प्रदर्शनी में लिखते भी थे गेट वे टू हेवन। दोनों अक्षर होने चाहिए, नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी गेट वे टू हेवन, दोनों ही हेडिंग होनी चाहिए। नई दुनिया कैसी स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर के खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए ये चित्र बनाए। बाबा कहते उनको बताओ कि नई दुनिया की स्थापना करनी है कैसे होती है, ये प्रदर्शनी में उनके लिए चित्र बनाए ताकि आकर के वो समझेंगे। ये नई दुनिया कैसी स्थापन होती है उनके लिए चित्र बनाए हैं, आकर देखो गेट वे टू न्यू वर्ल्ड। पहले बाबा ने कहा गेट वे टू न्यू हेवन टू हेवन, अभी बाबा कह रहे गेट वे टू न्यू वर्ल्ड। ये अक्षर भी ठीक है, बाबा के पास कुछ भी कार्य करते थे ना, प्रदर्शनी बनाते थे या चित्र बनाते थे, उसमें जो लिखत लिखते थे बाबा को सुनाते थे, बाबा करेक्शन भी करते थे और बाबा उसके अंदर कुछ न कुछ एडिशन भी करते थे। तो आज बाबा बता रहे हैं गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। उन ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है कि भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया था, तो जरूर नई दुनिया स्थापन की होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून अथवा चांद में जाने की, उस समय चांद में जाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन वहां पर गए भी तो मिला क्या, मिट्टी मिली और तो कुछ भी नहीं मिला, कोई जीवन तो मिला नहीं ना। मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं मून अथवा चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते हैं, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं, इससे फायदा क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो तो बाबा ने क्या बताया, वो साइंस के माध्यम से जाएंगे, स्टार्स की ओर जाएंगे, मून की तरफ जाएंगे, वहां जाकर देखेंगे वहां पर क्या है क्या है, फिर मिलता तो कुछ नहीं है ना, भल कितना भी कहे वहां दुनिया बसाएंगे लेकिन बसा तो नहीं सकते ना। लेकिन बाबा कहते तुम साइलेंस की बल से जाते हो नई दुनिया में, अब तुम रियल साइंस साइलेंस में जाते हो, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते, भगवान को बुलाते ना आओ हमें ले चलो, तो इसका मतलब किस लिए बुलाते, बाबा कहते मौत के लिए बुलाते हो ना, तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी तो मौत के लिए ही बुलाते है ना, कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले चलो। परंतु समझते थोड़ी हैं कि पतित पावन आएंगे तो हमको, हम तो जैसे कालों के काल को बुलाते, कहते ना सबको ले चलो, वैसे भी कहते रहते हैं ये दुनिया रहने लायक नहीं है, ये दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, परंतु बाबा कहते वो समझते ही नहीं है कि कालों के काल को बुला रहे हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता। जब काल आता है तो कहेंगे हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद ही तो बुलाया है ना। तो बाबा कहते हैं पति पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, अभी तुम सोचते हो कि बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, अब हम जाते हैं अपने घर, कहाँ जाना है अपने घर, अब हम जाते हैं अपने घर। बुद्धि काम करती है ना, यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होंगी, बाबा के सामने बैठे होते थे, बाबा मुरली चला रहे हैं, लेकिन कभी कभी माया का रूप ऐसा आ जाता था, बुद्धि धंधे की तरफ गई, घर को याद कर लिया, कभी किसको याद कर लिया, और बाबा के सामने कई बच्चे सुस्ती करते या उबासी करते थे ना, तो बाबा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बाबा कहते देखो देखो क्या है, माया मासी आ गई है, तो इसलिए ध्यान रखना है जब भी मुरली में बैठते हैं तो बिल्कुल सुस्ती ना हो, अगर कोई सुस्ती कर रहा है ना तो पास वाला उसको हाथ से हिला दे थोड़ा सा, उसको बहुत प्यार से हिला देंगे तो फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे तरफ दौड़ती होंगी, फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम तो यहाँ बैठे हो ना, बाप और वर्षे को याद करो, बाप आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे, आत्मा याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि उस तरफ चली गई, फिर मुरली सुनते रहेंगे, बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, अभी टाइम क्या हो रहा है, लंदन का टाइम पता नहीं कौन सा हो रहा है, अभी तो अमृत वेला भी नहीं हुआ, अभी तो रात का टाइम है, थोड़ा अमृत वेला हो जाए, फिर जाकर मुरली सुन रहे हैं कि टाइम को देख रहे हैं कि लंदन का टाइम मैच करे, तब जाकर के बात करें। तो बाबा कहते हैं समाचार आया, समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, यहाँ बैठे हुए भी उनकी बुद्धि में उसकी याद आती रहेगी, तो भी तो तुम भी यहाँ बैठे हो, याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती है ना, अब बैठे हुए यहाँ पर बैठे तो कुछ कर नहीं सकते ना, मुरली के बाद जाकर के सारा करो। तो बाबा कहते यहाँ बैठ करके सोचते रहेंगे तो कुछ कर भी तो नहीं सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि जाती है, तो तुम यहाँ बैठे हो सब कुछ करते, शिव बाबा को याद करते रहो तो भी ओहो सौभाग्य। यहाँ बैठे हुए भी अगर कोई बीमार के प्रति भी शुभ भावना भेजो और उसको भी शिव बाबा की याद दिलाओ तो बाबा कहते तो भी ओहो सौभाग्य। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो, तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। आज का जबरदस्त डायरेक्शन, तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ, वह ये किसने कहा, शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे, उनको कहो श्री कृष्ण तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे, वो तो नहीं करता, करने वाला तो शिव बाबा है, मानेंगे। क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़ी है, परम पिता परमात्मा ही। बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना करने वाला कौन है, बाबा है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहे हैं, ये मानेंगे भी, उनको सुनाएंगे ना कि परम पिता परमात्मा पुरानी दुनिया को नया बना रहे, ये फिर भी मानेंगे। श्री कृष्ण नई दुनिया बना रहे ये तो नहीं मानेंगे ना, ये वह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है, तुम्हारे लिए तो अब, फिर दूसरी बात बाबा बता रहे बहुत खुशी की, तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ट है। क्या है, हथेली पर बहिष्ट, नहीं सभी आया के आया, तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ट है। बाप कहती हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, कितनी बड़ी बात। बाप कहती हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे ना। अब बताओ जो स्वर्ग का मालिक बनेंगे वो बाबा को हाथ खड़ा करके बताओ, बनेंगे, सब बनेंगे ना, सब कोई भी पद मिले चाहे कैसा भी मिले, हो तो स्वर्ग के मालिक ना, तो फिर से बाबा को बता दो, हमें नहीं देखना है बाबा ने देखना है, बाबा को बता दो हम बनेंगे जरूर, है ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए अब हथेली पर बहिष्ट है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे ना, बनेंगे ना, वहाँ क्यों नहीं बनेंगे, बाबा को क्या जवाब देना खुशी से, वहाँ हम क्यों नहीं बनेंगे। किसी को अच्छी चीज मिले क्या कहेगा, क्यों नहीं नहीं नहीं, हमें किसको मिल रहे तो कहेंगे हाँ हाँ हमें चाहिए। तो बाबा भी कहती है बोलो वहाँ क्यों नहीं बनेंगे, अच्छा मुझे याद करो स्वर्ग का मालिक बनना है, तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म होंगे। तुम बच्चे जानते हो कि विकर्मों का बोझ आत्मा पर है ना कि शरीर पर, दुनिया वाले कहते हैं ना शरीर ही सब कुछ करता है आत्मा कुछ नहीं, तो बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझ आत्मा पर है ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझ है तो शरीर को जला देते हैं, तो उसके साथ पाप भी तो जल जाते, लेकिन आत्मा ही सब कुछ ले जाती ना अपने कर्म का फल। कोई भी आत्मा जब जन्म लेती है तो कहते इसके कर्म का फल है। तो बाबा भी बता रहे हैं अगर शरीर पर बोझा होता तो शरीर को जला देते हैं, तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भगत है ना, पुजारी को कभी भी पूजे कह नहीं सकते। जो पुजारी है वो पूजे नहीं, जो पुजारी है वो फिर बाद में चल पुजारी बने, लेकिन जो पूजे है वो पुजारी ने बाद में बनता, उस समय नहीं। तो बाबा कहते पुजारी को पूजे कह नहीं सकते। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भगत है ना, पुजारी को कभी पूजे कह न सके। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है धारणा के लिए मुख्य सार, पहला जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा लेना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, ये है रोरोनर्क कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, सदा इसी स्मृति में रहना है। आज का वरदान विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। इसका विस्तार है, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं का संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी ही इन्वेंशन निकालो, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। यज्ञ में क्या करते, तेल जो डालते ना, तो बाबा ने कहा कौन से तेल जो डालने हैं, पुराने संकल्प पुराने स्वभाव पुराने संस्कारों का स्वाहा करना है। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव व पुराने चलन के तिल वह जो यज्ञ में सुहा करो तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन, बालक और मालिक पल के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिक पल के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। इस ईश्वरी सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीए दान है। किसका दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। किसका दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी योग के बाद सभी बच्चे वाले भाई बहने बैठे रहेंगे, क्योंकि आज आप सबको बाबा के घर से सौगात मिलेगी। बच्ची वाले हाथ खड़ा करें, बाकी सब अभी योग के बाद सब बच्ची वाले बैठे रहेंगे। बच्ची में भी जो खाना खिलाने वाले कोई भी ड्यूटी करने वाले वो भी नहीं उठेंगे, वो भी सब बैठे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। एक सूचना है अवतार भाई और मृत्युंजय भाई की तरफ से कि जब दादी जी का स्मृति दिवस आता है उस समय एक तो इंटरनेशनल मैराथन का कार्यक्रम रखा जाता है, और उस समय समाज सेवा प्रभाग की ओर से और विशेष दादी जी के दिवस के निमित्त ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। उस कैंप रखने के लिए आज शाम को 6:30 बजे शांतिवन में मीटिंग रखी है, जिसके लिए मृत्युंजय भाई और अवतार भाई ने कहा कि सभी डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं, जो भी इस कार्य में अपना सहयोग देने जाते हैं, वह आज शाम को 6:30 बजे शांतिवन में मीटिंग के लिए जाएंगे। और बोर्ड पर तो लिख ही दिया है। अच्छा, ओम शांति।